नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ। और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत।
बहुत शुक्रिया अतहर भाई।
बढ़ते हैं मुख्य समाचारों की ओर। पैरालंपिक एथलीटों का पहला दल पेरिस पैरालंपिक के लिए रवाना हुआ। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए भारतीय टीम पेरू की राजधानी लीमा के लिए रवाना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। फारूक अहमद को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के रौनक दहिया ने 110 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में भारत के तीन पहलवान सेमीफाइनल में। और जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में सतीश कुमार करुणाकरण ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। शुरुआत पेरिस पैरालंपिक की खबर के साथ। 5 स्वर्ण सहित एक दर्जन पदक जीतने की उम्मीद के साथ भारत के पैरालंपिक एथलीटों का पहला जत्था स्टार भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल की अगुवाई में पेरिस पैरालंपिक के लिए रवाना हो गया है। पैरालंपिक पर और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी मुकेश कुमार से।
भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने के लिए समय से पहले रवाना हुए हैं। देश के 16 पैरा एथलीट उद्घाटन समारोह से 3 दिन पहले 25 अगस्त को खेलगांव में प्रवेश करेंगे। पैरालंपिक में अपने खिताब की रक्षा करने वाला पहला भारतीय बनने के लिए चुनौती पेश करने वाले अंतिल सहित अन्य भारतीय खिलाड़ी फ्रांस की राजधानी के पास प्रशिक्षण लेंगे। पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाएं 30 अगस्त से पैरालंपिक के समापन दिवस 8 सितंबर तक स्टेड डी फ्रांस में आयोजित की जाएंगी। इसी स्टेडियम में पेरिस ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धाएं भी हुई थीं। सुमित अंतिल और कुछ अन्य पैरा एथलीट खेलगांव में प्रवेश करने से पहले कुछ दिनों के लिए नेल्सन मंडेला खेल परिसर में प्रशिक्षण लेंगे। जापान के कोबे में 2024 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा था। भारत पैरालंपिक में 12 खेलों में 84 खिलाड़ियों की अपनी अब तक की सबसे बड़ी टीम भेज रहा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
मलय, जोश उमंग बुलंद हौसले और जज्बे के साथ हम पेरिस जा रहे हैं पैरालंपिक के लिए। आपके आकलन के आधार पर कितने खिलाड़ी विक्ट्री स्टैंड पर पहुंच रहे हैं और कितने मेडल भारत की झोली में आने की संभावना आपको नजर आती है?
देखिए, जब आप टोक्यो पैरालंपिक्स की ओर नजर डालें तो पता चलता है कि 19 पदक मिले थे, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक थे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। और अगर हम बात माने सत्यनारायण साहब की, जो एथलेटिक्स के कोच हैं, तो जो उन्होंने कहा है इस बार कि हमें 12 पदक कुल मिल सकते हैं, सोच समझ कर कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तैयारी है भारतीय पैरालंपिक्स टीम की, और सुमित अंतिल एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया जानती है, नीरज चोपड़ा ने कहा है कि अपना नॉर्मल गेम खेलिए, जो नेचुरल गेम है खेलिए, कुछ उसके लिए विशेष कोशिश मत करिए, वो तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से इनकी तैयारियां कराई जा रही हैं, 16 पैरा एथलीट्स को पेरिस के एक होटल में रखा जा रहा है, जो नेल्सन मंडेला जो उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है उसके आसपास है, तो इस तरह से जो इन खिलाड़ियों से हम उम्मीद कर सकते हैं वो उम्मीद वही है जो सत्यनारायण साहब ने कही है कि कुल मिलाकर हम 12 पदक, तो कम से कम 12 पदक लेकर आएंगे, जिसमें 5 स्वर्ण होंगे।
जी जी, उन्होंने 5 स्वर्ण की उम्मीद जताई है। अच्छा, एक सवाल और है, किन खिलाड़ियों पर मले खास तौर पर हमारी नजर रहेगी, जहां तक स्वर्ण पदक का सवाल है या फिर रजत पदक की बात है या फिर विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचने की संभावना है?
देखिए, पुरुषों की जैवलिन में अंतिल, फिर दीप्ति जीवनजी हैं महिलाओं के 400 मीटर रिले में रेस में, और सचिन खिलाड़ी हैं शॉटपुट में, एकता भयान हैं, सिमरन शर्मा हैं, और एक और नाम है मरियप्पन थंगवलू मेन्स हाई जंप में, पुरुषों के हाई जंप में।
जी जी,
और उन्होंने स्वर्ण जीता था पहले। तो इस तरह से ये वो खिलाड़ी हैं जिनको पदक की उम्मीद हम लोगों ने जिन पर लगाई हुई है, और ऐसा लगता है इनके खेल को देखते हुए और पिछले दिनों के प्रदर्शन को देखते हुए कि इनसे फिर से एक बार पदक की उम्मीद की जा सकती है।
और सुमित अंतल से भी हमें काफी कुछ उम्मीद है कि वो अपना पिछला प्रदर्शन दोहराएंगे और बेहतरीन प्रदर्शन वो कर पाएंगे।
बिल्कुल, देखिए
आगे बढ़ते हैं। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए भारतीय टीम आज सुबह पेरू की राजधानी लीमा के लिए रवाना हुई। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी सरफिरोजी।
एशियाई अंडर 20 के कई पदक विजेताओं के 43 सदस्यीय राष्ट्रीय दल में शामिल होने से भारत को उम्मीद है कि वो कोलंबिया के कैली में 2022 विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में जीते गए 2 रजत और 1 कांस्य पदकों के प्रदर्शन में और सुधार करेगा। भारतीय दल को इस साल अप्रैल में दुबई यूएई में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण 11 रजत और 11 कांस्य पदक जीतने से मिले उत्साह का लाभ उठाने की उम्मीद है। मुख्य जूनियर एथलेटिक्स कोच एन रमेश के अनुसार विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स 2024 की मजबूत तैयारियों के बाद दल अपना दमखम दिखाने के लिए उत्साहित है। भाला फेंक स्पर्धाओं के लिए पंजाब के पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान में प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया था, जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर बेंगलुरु में अन्य स्पर्धाओं के लिए शिविर लगाए गए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुख्य जूनियर एथलेटिक्स कोच के हवाले से कहा कि पटियाला में एनआईएस परिसर में थ्रोइंग स्पर्धाओं के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। मुख्य जूनियर एथलेटिक्स कोच ने कहा कि व्यक्तिगत स्पर्धाओं के अलावा राष्ट्रीय टीम 4x400 मीटर रिले और 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धाओं में भी भाग लेगी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
मले, जहां तक विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 का प्रश्न है तो हमारे युवा एथलीटों से आपको क्या उम्मीदें लगती हैं? क्या हम पिछले प्रदर्शन में सुधार कर पाएंगे?
देखिए, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स जब हुई थी इसी वर्ष 2024 में ही, तो उसमें 7 स्वर्ण 11 रजत और 11 कांस्य पदक इन हमारे अंडर 20 के एथलीटों ने जीता था।
जी जी।
और यही कारण है कि जो उनके मुख्य जूनियर एथलेटिक्स कोच हैं एन रमेश, वो बहुत ही उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर हम वहां कुछ नया ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे जो पूरी दुनिया को यकीन नहीं होगा कि भारतीय एथलीट्स भी इतना बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं अंडर 20 वर्ग में। और जिस प्रकार से उनकी तैयारी कराई गई है, जो हमने रिपोर्ट में भी सुना, एनआईएस पटियाला में उनकी ट्रेनिंग हुई है और जिस तरह से उनको प्रिपेयर किया गया है, मुझे लगता है कि लीमा में जब ये एथलीट जाएंगे तो पूरी दुनिया के लिए कुछ आश्चर्यजनक फैसले और परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि बहुत सारे एथलीट हैं इसमें जिनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। 400 मीटर के रिले रेस में जो लोग दौड़ेंगे उसमें बापी हंसदा जो लीड करेंगे वो बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, जय कुमार उनके साथ हैं। 800 मीटर में साहिल खां हैं और उसके बाद नयन प्रदीप हैं जो 110 मीटर हर्डल्स में दौड़ेंगे। शाहरुख खां 3000 मीटर के स्टीपल चेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है पिछले दिनों। और फिर अनुराग सिंह कैलर हैं शॉर्टपुट में, सिद्धार्थ चौधरी हैं शॉर्टपुट में, ऐसे अनेक नाम हैं। महिलाओं में भी उन्नति अय्यप्पा हैं और नीरू पाठक हैं, ये लोग जो धाविकाएं हैं बहुत इनसे उम्मीद की जा सकती है।
हमारे जो खेल संस्थान हैं या फिर हमारी जो खेल मंत्रालय है या फिर हमारी सरकार है लगातार खेलों पर जोर दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। जहां तक उनकी सुविधाओं का सवाल है, जो अधिकतम सुविधाएं हैं, चाहे वो कोच की है, चाहे वो स्टेडियम्स की है, चाहे दूसरी जो जरूरत होती है, जो स्टाफ है, पर्सनल स्टाफ है, हर एक चीज में प्रोत्साहन दे रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में, ऐसे हालात में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम, हमारे जो एथलीट्स हैं, इस स्पर्धा में भी बेहतर कर पाएंगे। जहां तक प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 का,
कोई शक नहीं इस बात में। देखिए, अगर आप ओलंपिक्स को ही देख लें जो अभी समाप्त हुए हैं, तो खेलो इंडिया से निकले हुए एथलीट्स उसमें पदक जीत रहे हैं। मनु भाकर जीता जागता उदाहरण है उसमें,
बिल्कुल।
और ऐसे कई लोग हैं, तो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, जो हमारी सरकार कर रही है अभूतपूर्व।
बिल्कुल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोल ने इस्तीफा दे दिया है। आज ढाका में युवा और खेल मंत्रालय में बीसीबी निदेशकों की एक आपातकालीन बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता फारूख अहमद को नया बीसीबी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूं, मले, नजमुल हसन पापोन के इस्तीफे का प्रभाव बांग्लादेश क्रिकेट पर कितना पड़ेगा?
देखिए, ये तो राजनीति का खेल है और ये राजनीतिक खेल जब खेल के मैदान में आता है तो थोड़ा बहुत तो असर उसका पड़ता ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अवामी लीग के सदस्य थे, उसके साथ जुड़े रहे, 12 वर्षों तक रहे और अब उनको वहां से हटाया गया है और उन्होंने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो इससे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये मत भूलिए कि फारूक अहमद एक ऐसे खिलाड़ी हैं, 1988 से 1999 तक वो खेले हैं, 7 ओडीआईज खेले हैं, तो उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा कराएंगे अपनी टीम को।
और बात कुश्ती की, जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के रौनक दहिया ने 110 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक के प्ले ऑफ में रौनक ने कल तुर्की के इमरुल्लाह कैपवान को आसानी से 6-1 से हरा दिया। ये भारत का इस प्रतियोगिता में पहला पदक है। रौनक इस समय अपने आयु भार वर्ग में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। मले, क्या किसी और युवा पहलवान से हमें पदक की उम्मीद है? जहां तक
देखिए, पहले जरा रौनक की बात एक पंक्ति में आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक कुश्ती में भारत के पदक के दावेदारों का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अरीना में, उसमें ग्रीको रोमन कुश्ती में एक 20 साल से कम का लड़का जाकर और वहां पे अपना झंडा बुलंद करता है और दिखाता है कि हम भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से जो उन्होंने किया है, और अभी एक साईनाथ परधी हैं जिनको रेपचाज राउंड में एक मौका मिल सकता है पदक जीतने का, तो हमें गर्व इस बात पर होना चाहिए कि कुश्ती ही नहीं, अन्य कई खेलों में, जैसा अभी एथलेटिक्स की चर्चा हमने की, भारत के युवा खिलाड़ी एक लंबी कतार उनकी है उदीयमान सितारों की, जो आकाश में भारत के खेल क्षितिज पर बिल्कुल जगमगाने को तैयार हैं।
बिल्कुल ठीक है हमारे। महिला वर्ग की अगर बात करें तो भारत के 3 पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अदिति कुमारी ने यूक्रेन की कैरोलिना शपेरिक को 10-0 से और मरियम मोहम्मद अबेदाल को 4-2 से हराकर महिला कुश्ती के 43 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि नेहा की अगर बात करें तो उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में बिना कोई अंक गवाए प्रवेश किया। उन्होंने यूनान की मायरी मेनी को चित्त करने के बाद जॉर्जिया की मिरांडा केपेनाद्जे को तकनीकी दक्षता के आधार पर हराया। और इसके अलावा पुलकित ने 65 किलोग्राम वर्ग में चीन की लिंग केई को पछाड़ने के बाद जूलियाना केटेनजारो के खिलाफ 9-0 से जीत दर्ज की। मलिक, आपको हमारी महिला पहलवान से उम्मीद है कि वो पदक तालिका में गोल्ड दर्ज कराने में सक्षम होंगी?
ये अंडर 20 की महिलाएं जब इतना अच्छा खेल रही हैं, तो ये बताता है कि आने वाला दिन कितना अच्छा भारत का कुश्ती में रहने वाला है। पदक की उम्मीद सेमीफाइनल में जब आप पहुंचते हैं तो पदक के मजबूत दावेदार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं।
और अब बात जापान ओपन बैडमिंटन की। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के सतीश कुमार करुणाकरण ने आज योकोहामा में पहले दौर में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन के मैच के बीच में चोटिल होने के कारण हटने पर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दुनिया के 47वें नंबर के खिलाड़ी सतीश अब प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के केंटाफोन वैंग चेरोइन से भिड़ेंगे। मिक्स डबल्स में भारत की सुमित रेड्डी और सिक्की रेड्डी की जोड़ी का अभियान खत्म हो गया। महिला डबल्स में ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतापर्णा पांडा को भी पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला कोई भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहा है। आमले, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय जैसे खिलाड़ियों की गैर हाजिरी में हमें सतीश से कितनी उम्मीद करनी चाहिए?
ये बड़ी खुशी की बात है कि जब ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत से सितारे यहां नहीं हैं जापान ओपन में, जो कि एक कठिन प्रतियोगिता होती है, और उसमें भी 47वें नंबर का खिलाड़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन करे और उससे अच्छे खेल की उम्मीद भी रखी जाए, तो ये पता चलता है कि हमारा सुनहरा कल जो होगा वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है, खासकर बैडमिंटन में। तो सतीश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने अभी तक भारत में भी प्रदर्शन किया, यहां तो उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उनके खिलाफ जो खिलाड़ी थे वो चोटिल होकर बाहर चले गए, तो और किरण जॉर्ज कुछ खास नहीं कर पाई, मगर उम्मीद है कि ये आने वाली पीढ़ी आने वाले दिनों में भारत को अनेक पदक दिलाएगी।
और अंत में हॉकी। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का आज दोपहर ओडिशा के भुवनेश्वर में जोरदार स्वागत किया गया। हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए खेल प्रेमी सहित बड़ी संख्या में लोग हवाई अड्डे पर एकत्र हुए। और श्रोताओ, आप समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मले, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।